ओम शांति। नेशनल सर कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल सेशन हम शुरू कर रहे हैं। अपनी भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ संस्कारों अनुसार परमपिता परमात्मा की याद से और सुंदर ईश्वरीय गीत के साथ हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सभी भाई बहनों से निवेदन है, कृपया सभा में आकर बैठ जाएं और साइलेंस में बैठें। 3 मिनट परमात्मा की याद में एकाग्रचित होकर हम बैठेंगे। गीत और संगीत के साथ साथ हम अपने मन को प्रभु पिता की याद में एकाग्र करेंगे। 3 मिनट साइलेंस।
भरपूर बनेगा ओ भारत, फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। बालक कृष्ण कन्हैया का राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। अब देर नहीं भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी वीरों ने आकाश भरा
ओम शांति। परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ स्मृति के साथ आज के उद्घाटन सत्र को हम आरंभ कर रहे हैं। संशोधन क्षेत्र में आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च इस विषय को लेकर के ये हमारी राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है। भारत का इतिहास बताता है कि भारत के आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने कि जब विश्व बहुत पीछे था सो रहा था उस समय भारत के मनुष्यों ने ऋषियों ने आर्ष दृष्टाओं ने आध्यात्मिकता और योग ध्यान के माध्यम से भौतिक जगत के बहुत सारे विविध क्षेत्रों में संशोधन करके नई बातें रखी। इससे सिद्ध है कि संशोधन के क्षेत्र में भी आध्यात्मिकता किस प्रकार से मदद करती है। इस विषय पर हमारे वर्तमान समय के काफी वैज्ञानिक भाई बहने और योगी भाई बहने भी रिसर्च का काम कर रहे हैं। हमें मौका मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस में हमें इन सबको सुनने का। मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों को। ब्रह्मा कुमारी तनुजा बहन और शशि बहन कृपया मंच पर आए और मंचासीन मेहमानों का बैज और फूलों से स्वागत करें। सभी का भी इसमें स्वागत समाया हुआ है। सभी अपनी खुशियां तालियों के द्वारा अभिव्यक्त करेंगे। डॉक्टर कांतिलाल जी के सरोज बहन डॉक्टर सुशील चंद्र बीके अंबिका बहन जी डॉक्टर एच एस बावस्कर वी जी एस शर्मा स्मिता लेले सभी मंचासीन मेहमानों का बैज और गुलदस्ते से स्वागत हो रहा है। मैं आमंत्रित करती हूँ मधुरवाणी ग्रुप को। ब्राता बीके सतीश भाई बीके भानु भाई बीके जयराज भाई मधुरवाणी ग्रुप सुंदर स्वागत गीत हम सबके सामने पेश करेंगे। साथ में अपने सुरों का भी साथ दे रही हैं, ब्रह्मा कुमारी धर्मिष्ठा बहन और हमारी अन्य बहनें। गीत के शब्द हैं, पुलकित धरती हर्षित अंबर स्वागत गान सुनाए। सुनते हैं मधुरवाणी ग्रुप के भाई बहन।
धरती हर्षित अंबर स्वागत गान सुनाए। आजादी का अमृत महोत्सव आओ झूमे गाए। स्वर्णिम भारत रचने को हम मिलके कदम बढ़ाए। पार्थविंग की सिल्वर जुबली बधाइयां बरसाए। हम खुशियां खूब लुटाए। पुलकित धरती हर्षित अंबर स्वागत गान सुनाए। आनंद मगन हम गाए। आध्यात्मिकता पहली प्राथमिकता।
अनुसंधान में आध्यात्मिकता पहली प्राथमिकता।
सबसे पहले पवित्रता की प्रथम है आवश्यकता।
सबसे पहले पवित्रता की प्रथम है आवश्यकता।
त्याग योग और पवित्रता से अरुल धन सुलझाए। हम खुशियाँ खूब लुटाए। पुलकित धरती हर्षित अंबर स्वागत गान सुनाए। आनंद मगन हम गाए। दिशा आध्यात्मिकता की शिक्षा।
शिक्षा में एक नई दिशा आध्यात्मिकता की शिक्षा।
पर्यावरण सुरक्षा में है मानवता की रक्षा।
पर्यावरण सुरक्षा में है मानवता की रक्षा।
नई दृष्टि और नई सोच से जीवन जगत बचाए। हम खुशियाँ खूब लुटाए। पुलकित धरती हर्षित अंबर स्वागत गान सुनाए। आनंद मगन हम गाए।
आपकी तालियों का कारवां चलता रहना चाहिए। बहुत खुशी के पल है।
भारत रचने का ये ईश्वर का संकल्प है।
स्वर्णिम भारत रचने का ये ईश्वर का संकल्प है।
ब्रह्मा कुमारियों से करता जग का कायाकल्प है।
ब्रह्मा कुमारियों से करता जग का कायाकल्प है।
शांति वन सम्मेलन से खबरी सबको सुनाए। दुनिया को लुटाए। पुलकित धरती हर्षित अंबर। स्वागत गान सुनाए। स्वर्णिम भारत रचने को हम मिलके कदम बढ़ाए, खुशियाँ खूब लुटाए। पुलकित धरती हर्षित अंबर स्वागत गान सुनाए, आनंद मगन हम गाए, आनंद मगन हम गाए, आनंद मगन हम गाए।
माइक बहुत सुंदर प्रस्तुति रही ब्रह्मा कुमार सतीश भाई, जो गीत के लेखक गायक ब्रह्मा कुमार भानु भाई, जयराज भाई और हमारी साथी बहने। स्वागत परंपरा में अब हम बहुत सुंदर वेलकम डांस देखेंगे। बेंगलोर से कला मंदिर नृत्यालय कल्याण महाराष्ट्र से ये पूरा ग्रुप आया है। बहन विभावरी इस डांस ग्रुप की संचालिका है। बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। बहन विभावरी, रेणुका, अपर्णा, ज्योति, समर्था, खुशी और सेजल बहन बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं कला मंदिर नृत्यालय कल्याण महाराष्ट्र।
स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से।
मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से।
स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है।
आगमन से आपके आनंद ही आनंद है।
स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है
स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है
तभी तो परिवर्तन का नारा तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है
आगमन से आपके आनंद ही आनंद है
आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम
बेहद सुंदर प्रस्तुति के लिए बहन विभावरी और साथी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटी सी बालिका 11 वर्ष की आयु है कुमारी पलक जो बॉम्बे घाटकोपर से संबंधित अंबरनाथ सेवा केंद्र से पधारी है। बचपन से ही आप ब्रह्मा कुमारी के साथ संलग्न है। अनेक अनेक समय आपने अपने वक्तव्य का लाभ दिया है। आज भी हम सबके सामने अपना छोटी सी स्पीच प्रस्तुत करेंगी कुमारी पलक।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारी परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादी जी वरिष्ठ भ्राताएं और सभी हमारी बड़ी दीदियों को तथा निमंत्रण पर पहुँचे हुए माननीय महानुभव हमारे सामने उपस्थित सभी भी के भाई बहन एवं विविध क्षेत्र में कार्यरत आमंत्रित सभी को प्रभु पिता के घर में प्रभु परिवार में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ। आज हमें इसकी भी बहुत बहुत खुशी है कि हमारे पास बड़े बड़े नामी ग्रामी साइंटिस्ट एवं विविध क्षेत्र के पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री आदि जो बहुत व्यस्त होते हुए भी इस कॉन्फ्रेंस में ईश्वरीय निमंत्रण स्वीकार करके पहुंच गए हैं, तो उन सभी का विशेष स्वागत भी है तो और धन्यवाद भी है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में महानुभवों का आज शाम को सम्मान समारोह भी है। ऐसे महानुभवों की उपस्थिति से ऐसे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में सर्व के सहयोग से और प्रभु की मदद से और निश्चित नाटक के अनुसार कुछ न कुछ ऐसी उपलब्धि होनी है जिसमें विश्व के कल्याण का कोई न कोई नया अनुसंधान निकले। आज तक साइंस दान ने मनुष्यों के बहुत सुख के साधन, समय की बचत करने वाले, मन को खुशी दिलाने वाले अथवा शारीरिक शक्ति बचत करने वाले ऐसे साधन उपलब्ध करके दिए हैं। मानव जात उसके लिए सदा ही आभारी रहा है, परंतु समय अनुसार इन सभी साधनों के होते हुए मनुष्य का जीवन सुख, शांति और समाधान से कोसों दूर जा रही है। उसके लिए आवश्यकता है लोगों को आध्यात्मिकता की ओर लाने की, क्योंकि आध्यात्मिकता अर्थात सद्गति का ज्ञान, आत्मा परमात्मा के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि उसके आगे कोई भी प्रकार का दुख, समस्या व अशांति टिक नहीं सकती। ये कार्य हम तो कर ही रहे हैं, परंतु आप जैसे लोग जो सत्यता को अपने अनुभव से परख लेते हैं, उनके ऊपर लोगों का पूरा भरोसा होता है, क्योंकि आज की झूठी दुनिया में या तो लोग अंधश्रद्धा में कहाँ धोखा खाते व सत्य को न परखने के कारण भी डर के मारे भी अनुभव करना ही नहीं चाहते। दूध से मुंह जलने के कारण वह छाछ भी फूंक लगाकर डर से पीता है। तो मैं आपकी छोटी बहन का नम्र निवेदन है कि आप सभी मेरे सच्चे सच्चे आत्म रूप में भाई हो, अनुभवी हो, तो मैं आपसे अधिकार से आशा रखती हूँ कि आप इस सत्य ज्ञान और राज्यों की गहराई में जाकर स्वयं भी विविध अनुभव कीजिए और जनता को बताएंगे तो ये बहुत बड़ी जनसेवा होगी। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत सुंदर छोटी सी बच्ची ने अपनी प्रस्तुति भी रखी और हमें सुंदर संदेश भी दिया। मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन जी को। इस विश्वविद्यालय की आप वरिष्ठ राज्ययुक्त शिक्षिका हैं और सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स की ट्रेनर हैं। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय हुआ आप विद्यालय से संलग्न हैं और दिल्ली में वसंत कुंज द्वारिका स्थित केंद्रों का आप संचालन कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स आदि में आपने मैनेजमेंट कोर्स कंडक्ट किए हैं। आप स्पार्क विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली की। आज हम सबके बीच अपना स्वागत भाषण रखेंगी आदरणीय बीके सरोज बहन जी।
ओम शांति। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हम लोग पिछले 3 दिन से लगातार अनुभवी वक्ताओं को सुन रहे हैं और परमात्म मिलन की मौज का अनुभव कर रहे हैं। आज का ये दिन है जो आजादी का अमृत महोत्सव, उस उपलक्ष्य में एक पाठ ये था कि हम पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जिन्होंने प्राप्त किया है और जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल किया है, उनको हम एक ही मंच पर बुलाएं। मैं आपको खुशी के साथ ये कहना चाह रही थी, कल हमारे साथ एक पद्म विभूषण बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ आने के बाद गौरव महसूस हो रहा है क्योंकि इतने सारे पद्म भूषण या पद्मश्री केवल राष्ट्रपति भवन में इकट्ठे हुए थे और या फिर ब्रह्म कुमारी इसमें। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि राष्ट्रपति भवन में आए और उनको भी ब्लेसिंग्स देने वाला राष्ट्र का मालिक नहीं, पूरे विश्व का मालिक स्वयं परमपिता परमात्मा, उसने अपने बच्चों को यहां आमंत्रित किया है। और इस दिन का हमें इंतजार था कि हम सभी एक परिवार के सदस्य एकत्रित हुए हों और अच्छी तरह से इस समारोह को मनाएं। तो सर्वप्रथम मैं उस परमपिता परमात्मा जगत नियंता का आवाहन करते हुए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जिनकी प्रेरणा से हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जो हमारे आदरणीय रमेश भाई का सपना था कि शांतिवन में विशाल डायमंड हॉल के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होना चाहिए, बाबा ने उस सपने को साकार किया, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी हाथ हिलाकर बाबा की उपस्थिति महसूस करते हुए दिल की गहराइयों से स्वागत करेंगे, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और उसके बाद मैं देख रही थी एक बच्ची जो पलक है अंबरनाथ से आई है, ये तो पलक झपकते ही स्टेज पर आ गई, मैं कहीं देख ही रही थी तो ये पलक सामने आ गई और मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा कि हम क्या सुनाएंगे जो इस बच्ची ने न केवल स्वागत किया है लेकिन आप सबको अपनी शुभाशीष भी दी है कि आप सभी यहां से जाने के बाद क्या करें, जन जन तक बाबा का संदेश फैलाएं। प्रेरणा मिलती है छोटे बच्चों से, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत है पलक जी, आपका स्वागत है। और हमारे बीच में मधुरवाणी ग्रुप जिन्होंने हम सबका गीत के माध्यम से स्वागत किया, ये सतीश भाई बहुत पुराने समर्पित हैं, सभी जानते हैं, और इनके साथ ही स्वयं ही गीत बनाते हैं, बाबा के प्यार में गाते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी कुछ ही समय में हमारे बीच में आएंगे और हमने महसूस किया है आप चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज हैं, बेशक आप उम्र में करीब 90 को क्रॉस कर चुके हैं लेकिन मन से आप यंग हैं, इतना ज्यादा आप में उमंग उत्साह है। हम टीचर्स के लिए तो आप प्रेरणा स्रोत हैं, हमेशा हमें कुछ न कुछ योजनाएं बनाकर देते हैं और एनकरेज करती हैं कि आप ये करो ये करो, एक्नॉलेज करती हैं। मैं दादी जी का दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारे जो वरिष्ठ दीदी हैं, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी जी, ज्वाइंट चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी, जब भी आप ज्ञान सरोवर जाते हैं या जाएंगे, आप सबने अनुभव किया होगा कि सरलता, सौम्यता, दिव्यता की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने त्याग तप और सेवा से वहां के वातावरण को शक्तिशाली बनाया है, यही कारण है कि बाबा के घर में आने के बाद हर कोई ज्ञान सरोवर में विजिट करना चाहता है। तो मैं आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में अभी आदरणीय बृजमोहन भाई जी भी विराजित होंगे। आपका तो क्या कहना, आप हमेशा सदा हल्के और खुशी में रहने वाले और खुशी की रास करने वाले अलौकिक फरिश्ते हैं। बाबा ने आज भी कहा, परमात्म पालना का सबूत है सहज योगी जीवन। बहुत नेचुरल है आपका सब कुछ, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब कभी हम प्लान लेकर आपके पास जाते हैं, आप हमें प्रेरणा देते हैं कि इसके फर्दर आपको और क्या करना है, और क्या करना है रिसर्च में। तो आपसे हमें बहुत ही प्रेरणाएं मिलती हैं। हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। और इसके बाद हमारे आदरणीय भ्राता ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय जी, आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज हैं। देखिए कितना कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन इतना कार्यभार संभालते हुए भी बिल्कुल हल्के, सदा हर्षित मुख, हर्षित चित्त और डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिविनिटी के आप अवतार हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इतने ग्रैंड लेवल पे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना बिना डेडिकेशन के नहीं हो सकता। ये आज की बात नहीं है, जब से आपने बाबा के घर में पांव रखा है और आज तक भी आपका जोश बरकरार है। और जिस काम के लिए आप निश्चय कर लेते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं, तो कार्य सफल होता है। आपका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी जी, आप डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी घाटकोपर मुंबई। मैं आपको यूट्यूब में बहुत सुनती हूँ। आपने साकार बाबा की जो पालना ली है, आप उसका प्रतिफल हैं। और हमने देखा है कि जो आप अनुभव सुनाती हैं, दिल पर अमिट छाप छोड़ जाता है। आपके अंदर नेतृत्व कला, सीखने की कला, सिखाने की कला, बातों ही बातों में आगे बढ़ाने की कला आपके अंदर है। आप महाराष्ट्र मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं, इस मौके पर हमारा गौरव है। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे बीच में हमारी आदरणीय अंबिका दीदी जी, इनकी मैं क्या तारीफ करूं, क्योंकि आप स्पार्क विंग की चेयरपर्सन हैं, बेंगलोर से हैं। और आपके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है, आपकी वाणी में सरलता, संतुष्टता, मधुरता, ये आपकी वाणी है, वाणी में सदा रहता है। जैसे कहते हैं कि हम कभी ऐसा डिस्टेंस फील नहीं करते कि हम आपके पास कैसे आए। बेशक आप इतना बड़ा कार्यभार संभाल रही हैं, पर बहुत सरलता और सहजता से आप सबको गाइड करती हैं। आपके मन में सदा एक ही रहता है कि कुछ नया करें, कुछ करें। तो आपकी ही प्रेरणा से, दादी जी और बड़ों की प्रेरणा से, इतने सारे पद्मश्री, पद्म विभूषण और चीफ गेस्ट हमारे बीच में आए हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे बड़ी बात ये आपको बताने जाएंगे कि कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस लक्ष्य को लेकर किया गया, वो भी हम इनके द्वारा जानेंगे। इसके बाद हमारे विशिष्ट मेहमान आदरणीय भ्राता डॉक्टर एच एस भावस्कर, आपने किस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन किया है? पद्मश्री का जो आपने लकब हासिल किया, आपको नवाजा गया, वो है स्कॉर्पियन एंड स्नेक बाइट ओरल मेडिसिन में। तो आपने इस प्रकार की मेडिसिन निकाली है जो हम सबके लिए बहुत सरल कर दिया है अनुसंधान के माध्यम से। और आप वैसे तो एक गांव से, एक किसान के फैमिली से जन्म हुआ, लेकिन आपके पिता का एक विजन था कि हमारे जो बच्चे हैं वो सक्सेस की हाइट तक पहुंचे। तो आपने MBBS करने के बाद MD किया और आज इतने ओहदे पर आप पहुंचे, हम सबके सामने एग्जाम्पल सेट किया। आप डाउन टू अर्थ हैं और आपने हमारे बीच में आकर हमें गौरवान्वित किया। आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसके बाद हमारे विशिष्ट मेहमान डॉक्टर VGS शर्मा, साइंटिस्ट एट भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड। तो आपका जो है एक्सपीरियंस है, आपने करियर शुरू किया इको टॉक्सिकोलॉजी से टॉक्सिकोलॉजी तक, और जितने भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसमें GLP लैब सेट करने का श्रेय आपको जाता है। तो आपका भी हम दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट मेहमान हैं डॉक्टर समिता लेले। देखिए, बहनें भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, है ना? इसलिए बाबा ने कलश जो है माताओं के और कन्याओं के सिर पर रखा है और वंदे मातरम कहकर पुकारा है। तो आपने भी, आप फॉर्मर डीन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICT मुंबई में, और आप फर्स्ट वीमेन इंजीनियर रही जब आपने इस पद को संभाला। तो आप अपना प्रीशियस टाइम लेकर हमारे बीच में आए, आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं अभिनंदन करना चाहूंगी हमारे बीच में डॉक्टर सुशील चंद्रा, आप सीनियर साइंटिस्ट इन मास DRDO में हैं। मुझे अच्छा लगता है आप सबके बीच में ये बात कहना, पिछले 25 वर्षों से आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राजयोग का नियमित अभ्यास करते हैं। जैसा आपका नाम है ना सुशील, आप सचमुच सुशील हैं, स्वभाव आपका बहुत शील है, और आपने DRDO और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में के एसोसिएशन से बहुत सारी रिसर्च भी की है और विश्वविद्यालय तक उन्हें जोड़ने का श्रेय आपको जाता है। तो आपका भी मैं विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपके अपने ही घर में स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे बीच में हमारे डॉक्टर कांतिलाल भाई, आप देखिए कांतिलाल, डॉक्टर कांतिलाल, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आज मैं पढ़ रही थी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिरला कॉलेज मुंबई में हैं, कल्याण मुंबई। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पर कितना सिंपल लिबास है, कितना सिंपल इनका रहना है, लेकिन विचार बहुत ऊंचे हैं, डाउन टू अर्थ हैं। निमित दीदियां जो कहती हैं उसको आप, उस फुटस्टेप्स पर आप चलते हैं, इसलिए यही आपकी सफलता का राज है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इसके बाद हमारे बीच में ये कला मंदिर नित्यालय की कुमारियां बीच में आई थी अंबरनाथ महाराष्ट्र से, उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य के द्वारा हम सबका स्वागत किया। इन कन्याओं का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी गीता दीदी जो आज के कार्यक्रम की सूत्रधार हैं, बिना इनके तो कार्यक्रम अधूरा है, और इनकी वाणी में बहुत ही मिठास, सरसता, सरलता है, और इतना सुंदर ये समा बांध देती हैं कि हम सबको मालूम नहीं पड़ता। आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे देखिए आप इतने सारे, आप सबके सामने प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे शिव बाबा का जो राइट हैंड हमारा श्रीकांत भाई है, जो इस स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और उनके साथ ही संजय भाई और उनके और जो गुप्त रूप में साथी हैं, टीम है, उनका भी मैं स्वागत करना कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो पीछे रह करके सबको आगे बढ़ाते हैं और पूरे इंटरनेशनल लेवल तक स्पार्क को पहुंचाया है। और जब भी हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो विश्व स्तर पर लोग वहां ज्वाइन करते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ कुछ नए नए प्लान आप करते रहते हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप देखिए कि आपके बिना ये प्रोग्राम अधूरा है। जितने भी हमारे भाई बहने भारतवर्ष से अलग अलग स्थानों से स्पार्क प्लस पधारे हैं, तो आप कार्यक्रम की शोभा हैं, आपके कारण कार्यक्रम की सफलता है। तो आपका भी इस सभा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। और तो मैं, मेरे ख्याल में शायद ही कोई अगर रह गया हो, मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सरोज बहन जी, और आपका भी हार्दिक स्वागत है आज के इस इनॉग्रल सेशन में। हमारे जो भी वैज्ञानिक भाई बहने हैं, एक प्रकार से वे त्यागी, तपस्वी और निष्काम सेवाधारी हैं। व्यक्ति जब संशोधन का कार्य करता है तो जीवन के बाकी सभी क्षेत्रों से वो डिटैच हो जाता है और अपने कार्य में इतना एकाग्र हो जाता है, तभी वो समाज को एक नई चीज प्रदान करता है। आज के मंच पर भी और सभा में भी हमारे काफी वैज्ञानिक भाई बहने पधारे हुए हैं, और जो बीके भाई बहने आए हैं वे भी बहुत उमंग उत्साह से, हम हमेशा देखते हैं कि वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। जीवन की प्रयोगशाला में आध्यात्मिकता के सत्यों को अनुभव में लाना, अभ्यास में लाना, और इससे जो प्राप्ति और अनुभूति होती है वो सबके साथ शेयर करना, ये भी एक बहुत ऊंचा कार्य है। मैं आमंत्रित करती हूँ बीके डॉक्टर सुशील चंद्रा भाई को। वे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस DRDO दिल्ली में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आप हेड हैं और साइंटिस्ट जी रैंक पर आप कार्य करते हैं। साथ साथ आप राजयोगी हैं, प्रयोगी हैं। मैं अनुरोध करती हूँ कि स्पार्क विंग जो है उसके संबंध में हमें जानकारी दें डॉक्टर सुशील चंद्रा भाई जी। और उससे पूर्व हमारे बीच में परम आदरणीय राजयोगिनी दीदी डॉक्टर नलिनी दीदी जी हमारे बीच में पधारे हैं आज के इस कार्यक्रम में। उनकी शुभ प्रेरणाओं से भी हम लाभान्वित होंगे। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि दीदी जी का बैज और फूलों से स्वागत करें।
शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सबसे पहले बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे डायस पर आप लोगों के साथ में जो हमारी स्पार्कलिंग है उसके कार्य किस तरीके से चल रहे हैं उसके बारे में शेयर करने का अपने विचार मौका मिला। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले, क्योंकि मैं जब कल से आया तो कुछ लोगों से मेरे को इंटरेक्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनका भी यही जानना या उत्सुकता रहती है कि स्पेशली स्पार्कलिंग क्या कर रही है जिसकी वजह से हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं। यह ब्रह्म कुमारी में जब हम इस तरीके के इंटेलेक्चुअल्स को यहां जब इनवाइट करते हैं, चाहे वो डायस पर, चाहे वो डेलीगेट्स के रूप में, चाहे वो अब जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, उनके स्वागत के लिए, तो स्पार्कलिंग का स्पेसिफिक वर्क क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा SIR, ये हेडिंग है तो स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च, तो इसमें भी हम दोनों आयाम कवर करते हैं, स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च और रिसर्च इन स्पिरिचुअलिटी। कहने का मतलब हम जब किसी भी क्षेत्र के अगर हम रिसर्चर हैं और हम स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करते हैं तो हमारे स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करने के बाद रिसर्च के डायमेंशन में किस तरीके से उसमें विस्तार या वृहद रूप हम ले पाते हैं, एक ये भी रूप है। दूसरा रूप है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करते हैं तो ना केवल हमारे अंदर स्वयं के अंदर बिहेवियरल रूप में, कॉग्निटिव रूप में, चाहे न्यूरल लेवल तक हमारे अंदर ना केवल जो चेंजेस आते हैं, बल्कि हमारी वजह से हमारे साथियों के साथ, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे संसार के अंदर किस तरीके के हमारे पास चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं और उनको ओवरकम करने में हम किस तरीके से उसमें हेल्प कर पाते हैं। उसके लिए भी मैं दो शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगा। जैसे बीकेज में भी हम लोग ब्रह्म कुमारी शॉर्ट में बीकेज में भी हम इंटर और इंट्रा दोनों तरीके से कार्य करते हैं। मतलब इंटर मीन्स ब्रह्म कुमारी की भी जो और 20 हमारी विंग्स हैं उनके साथ मिलकर, लाइक ट्रांसपोर्ट विंग, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग, मेडिकल विंग, तो उन सब के साथ मिलकर हम किस तरीके से विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से रिसर्च को कर पाएं जिससे उनके रिसर्च का आयाम थोड़ा बड़ा हो जाए। और दूसरा इंट्रा मीन्स हम और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, और ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहे वो एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो या केवल कॉरपोरेट्स हो, और ना केवल देश बल्कि विदेश के साथ मिलकर भी। तो मैं कुछ समय को देखते हुए केवल कुछ संस्थानों का नाम जो प्रोमिनेंट हुए जिनके साथ में स्पार्किंग ने कार्य किए हैं मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं नेशनल में, और नेशनल में भी बिकॉज जैसा मेरे परिचय में कहा गया मैं DRDO से बिलोंग करता हूं, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा DRDO के साथ। ब्रह्म कुमारीज का DRDO का रिसर्च का मोर देन 25 ईयर्स से नाता रहा है। सबसे पहले एक प्रोग्राम कोरोनरी आर्टरी डिसीज कैट प्रोजेक्ट, जिसमें DPAS डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज के साथ मिलकर ब्रह्म कुमारीज के साथ में किया गया कि किस तरीके से बिना मेडिसिन के भी या मेडिसिन के साथ में भी हम अपनी आर्टरीज को जो ब्लॉकेज आ जाते हैं इस तरीके की जीवनचर्या को अपनाने के बाद न केवल भोजन में, न केवल अपने जीवन शैली में, न केवल राजयोग मेडिटेशन के साथ, टोटल जीवनचर्या को हम चेंज लाने के बाद उसमें किस तरीके से उपयोग में हम ला पाए। DRDO के साथ में उसके बाद में 2010 के हमारे डॉक्टर VK सारस्वत उस समय के जो चेयरमैन थे उनके आने के बाद हेडक्वार्टर के साथ मिलने के साथ कुछ हमारी जो DRDO की लैब्स हैं, DIPR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, तीन संस्थानों के साथ मिलकर पहले हम लोगों के साइकोलॉजिकल लेवल पर किस तरीके से चेंजेस पाए गए, फिर उसके बाद कॉग्निटिव लेवल पर, दैट मीन्स हमारी जो एडवर्सरीज होती हैं वो हमारी बौद्धिक क्षमताओं को कम करती हैं, बट राजयोग मेडिटेशन किस तरीके से हमारी उन बौद्धिक क्षमताओं को न केवल रेजिलियंस क्रिएट करता है बल्कि उनको बढ़ाने में हमको हेल्प करता है। उसको भी लेकर न केवल साइकोलॉजिकल स्केल या कॉग्निटिव टेस्ट बैटरीज के साथ उसका इवेल्युएशन किया गया बल्कि लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस को यूज करके, फॉर एग्जांपल ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम्स, फॉर एग्जांपल एफएमआरआई फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड एज वेल एज डीटीआई, मुझे उम्मीद है सभी को पता होगा डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। दैट मीन्स जो लोग लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स हो गए, हमारी बड़ी बहनें बड़े भाई लोग जो बहुत पुराने, तो उनके अंदर न केवल बिहेवियरल या यही चेंजेस आए बल्कि ब्रेन के लेवल पर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी पाए गए। तो उस तरीके का डीआरडीओ के साथ मिलकर कार्य किया गया। दूसरी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट जो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में इंडिया की बेस्ट मानी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, उनके साथ मिलकर भी जैसे मैंने अभी शेयर किया न केवल ईईजी और एफएमआरआई बल्कि ईईजी एफएमआरआई टुगेदर एंड देन उसके बाद में हमारे राजयोगीज उनके ऊपर उनके अंदर किस टाइप के चेंजेस आए और न केवल उन चेंजेस को उन स्ट्रक्चरल या ईजी के एनालिसिस में जब उसकी डिमांड ये की गई कि हमारा ये जो डाटा कलेक्ट हुआ है, क्योंकि जब ये प्रेजेंटेशन या पब्लिकेशंस की शेप लेते हैं तो ये देश और विदेश में जाके प्रेजेंट भी किया गया, तो जब मेरे एक स्टूडेंट ने जाकर प्रेजेंट किया तो वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक स्विट्जरलैंड उन लोगों ने उस डाटा पे इंटरेस्ट शो किया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक के साथ भी हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एमओयू हुआ और उनके साथ भी मिलकर कार्य हुआ। न केवल उनके साथ बल्कि हमारी जो और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, उनके अंदर ये पाया गया कि एक तो पेशेंट है जो अपने आप में खुद सफर कर रहा है, केवल उसी के अंदर न केवल मेडिसिन का इफेक्ट बेहतर पाया गया बल्कि उनके जो केयर गिवर्स थे, चाहे वो नर्सेज हैं, भाई बहन या माता पिता हैं या इवन डॉक्टर्स हैं, उनके भी व्यवहार में उनके भी सोच में पूरी तरह से चेंजेस पाया गया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी तक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के दिए, उसी तरीके से देश व विदेश के प्रोमिनेंट एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, जैसे अभी भी प्रेजेंट में भी पोस्ट डॉक्टरल वर्क चल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, साक्षी दृष्टा जैसे यहां पे बीके भाई बहन सभी लोग जानते हैं बल्कि डिटेच्ड ऑब्जर्वर इसको तो हम सभी लोग समझते हैं, उसको लेकर पोस्ट डॉक्टरल वर्क इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में कार्य चल रहा है। अभी लास्ट वीक और 10 डेज बिफोर मेरा इसी के नाते चंडीगढ़ जाना हुआ और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ में भी उनके साथ में भी डिस्कशन हुआ। आप लोगों को कई लोगों को ज्ञात होगा इंटरनेशनली यूएस एड हैज बीन डूइंग ए प्रोग्राम नोन एज पीवाईडी पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। ब्रह्मकुमारी इस पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट पे न जाने कितने वर्षों से ऑलरेडी कार्य कर रहा है, बट अब हम इन्हीं मॉड्यूल्स को लेकर किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्लस नेशनल एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर उसको रिसर्च विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ शो करें, उसका कार्य चल रहा है। समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए मैं केवल 2 या 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम और लूंगा। जैसे ईजी का एक बेस्ट मैन्युफैक्चरर है, उनके द्वारा 69 कंट्रीज के फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें न केवल मेरा बल्कि श्रीकांत भाई उनका जाना हुआ और वहां पर हमने मेडिटेशन के 2 पेपर्स राज्यों के मेडिटेशन के ऊपर रिजल्ट शेयर किए, तो न केवल उन्होंने उस पेपर को एक्सेप्ट किया बल्कि उन्होंने उसी समय वहां के एक वैज्ञानिक को लेकर और श्रीकांत भाई को लेकर ईजी रियल टाइम में इवेल्युएट किया और खुद ये एक्सेप्ट किया कि यस मेंटल स्टेट में बिकॉज ऑफ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस किस टाइप के चेंजेस व्यक्ति में पाए जाते हैं। लास्ट में मैं एक शब्द और इस्तेमाल करना चाहूंगा, SEL सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। इस समय यूएस में टोटल एजुकेशन सिस्टम में एक मेजर चेंज है एंड दे आर रियलाइजिंग कि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट किस स्टेज में किस उम्र में किस लेवल का होता है, तो हमारी एजुकेशन का भी रूप वही होना चाहिए। और मैं दो शब्द कहूंगा, न केवल ब्रह्मा कुमारीज में वो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग पे पूरा पूरा एम्फेसिस है, बल्कि हमारी जो पुरानी शिक्षा की प्रणाली थी भारत की, उसमें भी सोशल इमोशनल लर्निंग का एम्फेसिस है, जिसको वो अब रियलाइज करके विद रिसर्च पूरे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस ला रहे हैं। तो ना केवल समय को ध्यान में रखते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि न केवल मनुष्य पे, न केवल सोसाइटी पे, न केवल संसार पे, बल्कि जैसे ज्ञान में हमारे में कहा जाता है कि इवन जीव और निर्जीव चीजों पर भी मेडिटेशन का किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, उसका अभी जापान के इमोटो में वाटर के ऊपर हमारे मेडिटेशन के किस तरीके से इम्पैक्ट आ सकते हैं वो भी कार्य चल रहा है। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया सुशील चंद्रा भाई जी। हमारा स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्पार्क किस प्रकार से विविध क्षेत्रों में और विविध ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर कार्य कर रहा है। अब स्पार्क विंग की चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगिनी अंबिका बहन जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि आप हमें इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी दें। आप पिछले 45 वर्षों से इस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और बेंगलोर में रहकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लगभग 300 से भी अधिक सेवा केंद्रों, उप सेवा केंद्रों का आप संचालन कर रहे हैं। इतना जिम्मेवारी भरा कार्य संभालते हुए आपकी पर्सनालिटी शांति की है, बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का सुभग समन्वय हम आपके व्यक्तित्व में पाते हैं। तो सुनेंगे आदरणीय अंबिका बहन जी को।
ओम शांति। हमारे आदरणीय नलिनी दीदी जी, आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी और वरिष्ठ अतिथिगण और सारी मेरे भाई बहने, आज की ये कॉन्फ्रेंस जो स्पार्क विंग की ओर से आयोजित किया गया है, आप सोच रहे होंगे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होते हुए रिसर्चर्स और साइंटिस्ट से इनका क्या संबंध है, और पूछते भी है कि आप हमें क्यों बुलाते हो। तो इसका उद्देश्य दो तीन बातों में आपके आगे मैं रखना चाहती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो मूल उद्देश्य है, सारी ये मानवता की जो समाज है इसको एक दैवी समाज, दैवी गुणों से संपन्न एक सुदृढ़ समाज में परिवर्तन करने का, उसमें हमारे देश या दुनिया में अभी के समय प्रमाण वैज्ञानिक और अनुसंधान जो रिसर्च का काम चल रहा है उसका जो उपयोग देश और दुनिया में जो हो रहा है वो अद्भुत है। आपका कंट्रीब्यूशन सब लेवल पे है और सबको भौतिक सुख शांति देने में आप सफल हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये सब कुछ होते हुए भी समाज में अभी हमारे सुशील भाई जो सुना रहे थे डे बाई डे क्या हो रहा है, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो जिनसे भी हम मिलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो दिन प्रतिदिन जो प्रेशर्स, जो बर्डन, वो जो उनके शब्दों में जो कहते हैं जो टॉलरेबल नहीं है, जिस कारण आजकल सुइसाइड्स या डिप्रेशंस केसेस इवन इन रिसर्च में भी जो ऐसी स्थिति को हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली, तो रिसर्च वालों का बहुत सुंदर अगर एक होलिस्टिक रिसर्च सारी देश और दुनिया की उन्नति के लिए अगर होना है तो उसमें एक प्रशांत मन और एक सशक्त मन और एकाग्र चित्त बुद्धि की जरूरत है। उस उद्देश्य को समझते हुए इस पार्क विंग ने जो ईश्वरी विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य जो डिविनाइजेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड हार्ट, राजयोग मेडिटेशन द्वारा जो चल रहा है जिसके अंदर सारे बीसोई विंग्स काम कर रहे हैं, तो परमात्मा बाप ये कार्य एंशियंट गॉड डॉट राजयोग मेडिटेशन द्वारा जो हो रहा है अगर उसका लाभ रिसर्च फील्ड में मिल जाए, क्योंकि एजुकेशन में भी हमने कुछ समय पहले हम सुशील भाई प्रैक्टिकली जो जाके सर्वे करके आए वहां भी 70% बच्चे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकायत है जो ना स्कूल के टीचर्स को पता ना पेरेंट्स को पता। जब ऐसी दुनिया जिस ओर इतना चीज टुवर्ड्स द रैट रेस, अगर ये सारी बातों को अगर हम सुलझाए सहज तरीके से और जो भी प्रेशर्स हो या किसी भी प्रकार की टेंशन या स्ट्रेस हो इसको सहज तरीके से निवारण करते हुए अगर हम आगे बढ़े, राजयोग मेडिटेशन के जो प्रयोग है अप्लाइड साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी जिसमें सदैव एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड फोकस्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट जिसमें किसी भी प्रकार का हलचल ना हो, तभी अनुसंधान में रिसर्च में एक नया आयाम सतो प्रदान बुद्धि में सतो प्रदान संधान हो सकते हैं। जैसे जिस युग को हम लाना चाहते हैं स्वर्णिम युग, एग्जाम्पल वहां भी फ्लाइट्स होती हैं, लेकिन उसका स्पीड साउंड से ज्यादा और कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होता। ऐसे भी सतो प्रदान बुद्धि सतयुग में ऐसे एडवांस्ड साइंस होता तो उसका बीज यहाँ ही पढ़ना है। ये उद्देश्य मैंने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे हर रीति से सतयुग एक दैवी समाज सब बातों से पूर्ण सब वैज्ञानिक साधनों से संपन्न दुनिया है जिसमें सारी मानव सुख शांति और आनंद एक हार्मनी से जीते हैं। ऐसे दुनिया को लाने के उद्देश्य से स्पार्क विंग ने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है जिसमें आप सब आए, आपको दिल का निमंत्रण है और आप जरूर ये बात राजयोग मेडिटेशन जो हमारी पूरा लाइफस्टाइल को बदलता है जो सुख शांति की ओर, तो ऐसे राजयोग मेडिटेशन को आप अनुभूति करके जाइए। ये निमंत्रण देते हुए हम ओम शांति करते हैं, वाणी को विराम देते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका बहन जी। और अब हम आज की इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं दीप प्रज्वलन के द्वारा। मंचासीन हमारे वरिष्ठों को और मंचासीन मेहमानों को मैं निवेदन करती हूँ, कृपया वे आगे आए स्टेज पर और दीप प्रज्वलन में अपना हाथ बटाएं। साथ साथ सभा से भी मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कल्याणी मिश्रा राउरकेला ओडिशा, प्रवीण कश्यप मैग्नम अशोक बंसल जी दिल्ली से, भास्कर त्रिपाठी भोपाल से, डॉक्टर दिलीप चौरसिया सतना से, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे रीवा से, मिसेस प्रवीण मिश्रा रीवा, सिस्टर किरण भदौरिया ग्वालियर, डॉक्टर संजीवन बैनर्जी पुणे, पद्मश्री प्रोफेसर आर वी होसुर बॉम्बे और डॉक्टर ए वंजा बेंगलुरु। डॉक्टर फैयाज सर भी दीप प्रज्वलन के लिए पधारे। प्रकाश सद्ज्ञान सद्विवेक आत्म जागृति का प्रतीक है, हमें भी प्रकृति जगत के और आध्यात्मिक जगत के सत्यों को दुनिया के आगे लाना है।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए,
सहभागी बनेंगे।
सहज सरल
सभी एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं और अपने अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर दें।
मूरत मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
शांति। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं उद्घाटन सत्र के हमारे सम्माननीय मेहमान पद्मश्री डॉक्टर एच एस बावस्कर जी को।
जो इंडियन फिजिशियन साइंटिस्ट हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र के एक गांव में किसान परिवार में आपका जन्म हुआ, परंतु आपकी इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम से आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से MBBS किया, पूरी यूनिवर्सिटी में दूसरे नंबर पर आप आए। उसके बाद आपने बॉम्बे से MD किया और आपकी जो संशोधन की क्षमता थी वो बाहर आई। साधारण परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर, कॉलेज की फी भी आपके माता पिता नहीं भर सकते थे, लेकिन आप इतने होशियार, पढ़ाई में जो देखकर आपके प्रिंसिपल ने आपके कॉलेज की फी भरी और आप आगे बढ़े। विशेष करके आपने 40 वर्षों तक गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सेंटर पर अपनी सेवाएं दी और उसके बाद आपने संशोधन कार्य शुरू किए, खास करके बिच्छू और सांप के काटने से जो जहर चढ़ता है उसे मिटाने की जो ओरल मेडिसिन है उसकी आपने खोज की। सभी जोरदार तालियों से भाई सेठ का हार्दिक स्वागत करेंगे। हाँ, आपने वहाँ के ग्राउंड वाटर में भी काफी संशोधन करके उसे साफ किया और किडनी प्रॉब्लम से काफी लोगों को बचाया। ऐसी विशिष्ट प्रतिभाशाली डॉक्टर हिम्मत राव बावस्कर जी हमारे सामने अपना विचार रखेंगे। उससे पहले मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी उपस्थित हुए हैं, पुष्प और बैज से दीदी का सम्मान किया जाए।
ओम शांति। रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज, हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स, now I am here to talk to you about spirituality in the medical science. You see, WHO has defined health as a physical, mental and social well-being. Now it is added as a spiritual health, the fourth health, which is very important in the WHO also. But the important thing is that spiritual health cannot be diagnosed, cannot be detected by whatever the gadgets available today. It will be only detected by individual brain. That gadget is not available today in the as a physical gadget in the market. So, my dear friends, if the spirituality would have been there, along with atomic research and chemistry, there would have been no Hiroshima and Nagasaki. Now, that's important. If it is again today, the Russia and Ukraine will have not a war and they will not threat to the third war. So this is important heaviness and importance of the spirituality in the medical research. The most important thing that I see, many people say, do you see a God? Yes, I have seen a God. When a snake bite patient come to my hospital, in the midnight, he is totally paralyzed, unable to talk, unable to speak, unable to swallow, unable to move. When I started my treatment and became second down and in the morning, he sit in the bed and talk with me with the spiritual emotions, happiness on the face, and this can be explained, and he forced the spirituality in me. And that is important spiritual health. Many things can be written in this is that don't pluck the flowers and fruit. Flowers are the ornament of the plant. Please don't pluck them. Similarly, spirituality is the ornament of the science. Without spirituality, science becomes lusterless, useless and not applicable to the mankind. And spirituality of the health is very, very important. When the scorpion bite patient come to me, there was 40% death rate. Out of 100, 40 used to die at the primary health center. I had gone mad to see the dead bodies and pulmonary demand to perform the day-to-day postmortem on the dead bodies. When I got smart, this dead body has poured a spirit in my brain. Please go ahead and do the research. And this spirituality made me to go on to complete full graduation, come again to the same place, do the research, and research come with a fruitful outcome, with a mortality almost nil. And this is done without any investigation available. That is only human brain, and investigation available was BP apparatus and stethoscope only. So, my dear friend, the spirituality plays a very, very vital role in the life. If you don't understand spirituality, nothing can. If two individuals differ, spirituality makes them individual one. And we want same in the world. World should be unique. And unique enough. Peace of the world can be brought by if you add a spirituality to the research. If spirituality is separated from the research, it will be harmful to the world. And we don't want the harmful research in the world. We want the research to be peaceful and best for the mankind. This hall is a famous hall in the world. It occupies near about 25,000 populations. Credit goes to engineers. But when the Brahma Kumari arranged a conference of 20,000 people, spiritual is injected in the hall and it becomes the holy place of Brahma Kumari. That is the importance of spirituality. And one should go with the spirituality as a very, very important thing. Now, even in the COVID patient, when the COVID patient comes in the June of 2020, no vaccine, no proper treatment was available. Still we treated them. That time no doctor was ready to manage the patient, to treat the patient, to examine the patient. In that situation, I took oath that I have to treat the patient. Because when we wore a saffron or when we become a doctor, we are supposed to untake the patient, take the patient, not to go shoulder to the dead bodies. It is my duty to unstake the patient. And that's why we treated very closely. We examined in detail, just a simple examination, and my touch to the patient's body, say, doctor, we will take care, we'll cure, and patient really cured. This is called spirituality. What the patient needs is my hand. Patient needs, doctor should examine this. He may not treat, he may not give medicine. At least examination, that we do, and that will add something to the individual spirit. And spirituality plays a vital role in the management of medicine. When the patient of a scorpion sting used to die, the relative used to cry. I cry with the relatives, and this crying made me that we must go ahead and do the research, and this spirit made me to be very popular, to treat the patient. I'm happy. I'm very, very happy that I could able to save the many victims of scorpion sting. I support the whole family. You see, supporting is the whole family is very, very important. Farmers are the backbone of our industry. Nobody takes care of the farmers. Nobody listens to the cry of the farmers. Still farmers are committing suicide. See, how many farmers are invited, madam, here? I think that was very important. Few farmers from this area would have invited to attend this conference. Because farmers, see, look at what is spirituality. When the first rain falls, when there is first rain occurs, the soil emits a very beautiful smell, that is saint, which cannot be detected by anybody except the human nose. And that is spirituality added by the soil to the human being. And that's why we must do something for the farmer, because farmers is committing suicide. Being a son of farmer, I did a research on scorpion snake bite, though it was not funded by anybody. The funds is from my pocket and my family. Now you see, one day what happened? A hemiplegia patient come to my hospital. Every treatment was over. All treatments of hemiplegia was remain settled up. We cannot treat hemiplegia. One day night, early darkness, all his old friends come to meet him, and he is just calling by his name. He woke up and stand up. So this is for spirituality. That's where science is. And birth of spirit took place. And birth of spirituality is immortal, permanent, and irreversible. Science may be reversible. So, my dear friend, this is an individual duty to pour a spirituality in the society, and that research cannot be. Research will be lesserless without spirituality, and that is why everybody should try to treat the disease. Disease is what is the disease? Uneasiness is a disease. Uneasiness means by depression. Now, the more than 60% individuals in the society are depressed, and this depression cannot be treated by the drugs. If treated by drugs, unless a patient get a proper answer to his depression, that cannot be cured. So depression is the best way cured by spirituality, and most important, what happened by spirituality? Endorphin in the brain is released. When you get a mental peace, when you know how to walk on this world, when you feel there is no enemies to me, when you feel I am never angry on anybody, when you feel I am happy to see the happiness of others' face, the spirituality will help to yourself. And that we want, the word should be very important. Word should be now go with the spirituality, and spirituality plays a vital role today in the individual life. Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर जी. आध्यात्मिकता का जीवन में और हर क्षेत्र में कितना महत्व है आपने अपने अनुभवों से बताया. हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी ही सच्चा जीवन है. स्पिरिचुअलिटी हमें जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला सिखाता है. इसलिए आध्यात्मिकता के बिगर का जीवन जीवन नहीं है. हम ऐसे ही अनुभव की प्रेरणाएं लेंगे. परम आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी से. ब्रह्मा कुमारीज की आप ज्वाइंट हेड हैं. एशिया ऑस्ट्रेलिया के सेवा केंद्रों को संभालते हुए आप मुख्यालय में ज्ञान सरोवर एकेडमी के डायरेक्टर हैं. आईटी विंग की चेयरपर्सन हैं और विद्यालय के विदेश सेवाओं में 1971 में विद्यालय के द्वारा प्रथम डेलीगेशन फॉरेन में गया. तब से लेकर आपने 2010 तक विदेश में सेवाएं की. अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, पांचों ही खंडों में ईश्वरीय सेवा और उसका पायोनियर वर्क करने का श्रेय आपको जाता है. ऐसी दीदी से अभी हम शुभ प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे. आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी.
ओम शांति. मंच पर उपस्थित वक्तागण तथा सभा में उपस्थित सब भाई बहनें, भारत एक समय राम राज्य था जहां राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार बसे नगरी जिए दाता. ऐसा राम राज्य था जिसमें सब राम जैसे श्रेष्ठ चरित्रवान थे और आज भारत की क्या हालत हो गई है ये हम देख रहे हैं. जो इतना ऊंच था आज मॉरली बहुत गिर गया है. धर्म सिर्फ मंदिर में जाकर पूजा करने का, कर्म भ्रष्ट दिन प्रतिदिन अत्याचार व्यभिचार वायलेंस बढ़ते ही जाते हैं। साइंस ने हमें बहुत सुविधाएं दी, आज हम यहां से किसी भी देश में चंद घंटों में पहुंच सकते हैं, पर वही विमान का यदि एक्सीडेंट हो गया, जितने भी पैसेंजर है सब खत्म। आज टेलीफोन इंटरनेट द्वारा हम कईयों से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट एक सेकंड में कर सकते हैं, पर कई बार हमने देखा है घर वाले ही आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को भी नहीं जानते हैं, खास विदेश में पड़ोसी कौन है मालूम ही नहीं। आज हम हार्ट ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, परंतु एक दो की दिल ले नहीं सकते हैं। तो साइंस ने तो साधन दिए हैं, और वो साइंस दुख भी देती है। माँ बाप कई बार कंप्लेन करते हैं बच्चों को इंटरनेट गेम्स प्ले करने में टेलीविजन में इतना इंटरेस्ट है, जो माँ बाप से तो क्या अपने दोस्तों से भी खेलने नहीं जाते हैं, बाहर इंडोर ही सारा दिन रहते हैं, आउटडोर गेम्स बंद हो गए। तो हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी का समन्वय कर भारत को फिर से राम राज्य बनाना है, क्योंकि सत्युग त्रेता में हर एक के पास विमान थे, हर एक के पास सुख शांति वैभव सब कुछ थे, दुख अशांति वैर हिंसा का नाम निशान नहीं था, और सतो प्रधान दुनिया सतो प्रधान तत्व होने के कारण हरेक न सिर्फ खूबसूरत थे, लंबी आयु थी, 150 वर्ष की आयु, कभी बीमार नहीं होते।
विनाश खड़ा आगे।
ओम शांत। तो सतयुग में सतो प्रधान होने के कारण एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी थे। इतने हेल्दी थे कि डॉक्टर हॉस्पिटल का नाम निशान नहीं था। तो ये सी दुनिया हमें स्पिरिचुअलिटी द्वारा फिर से स्थापन करनी है, जहां साइंस के भी कंफर्ट होंगे। तो हर प्रकार की सुविधा भी होंगी, लोग का आपस में प्यार दिखाते हैं कि शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते थे, अर्थात प्राणियों के बीच में भी आपस में वैर नहीं था, हिंसा नहीं थी। तो ऐसी दुनिया थी, और फिर से परमात्मा जो स्वर्ग का रचता हेवनली गॉड फादर है, वो फिर से ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसमें हमें सहयोग देना है, परमात्मा की आज्ञा अनुसार चलकर अपने को सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी बनाना है। तो उम्मीद है कि आप इस कॉन्फ्रेंस के बाद यदि इन बातों का कोर्स नहीं किया है तो अपने अपने शहर में जरूर 7 दिन का कोर्स करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी। और अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे सम्माननीय मेहमान भ्राता डॉक्टर वीजीएस शर्मा जी को, जो साइंटिस्ट हैं भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड में, और भी अनेक रिसर्च संस्थाओं में अपने कार्य किया है, और इन रिसर्च वर्क के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के और भी विभागों को जिम्मेवारी से आप संभालते आए हैं। तो हम हमारे मेहमान से शुभ विचार प्राप्त करेंगे।
ओम शांति। नमस्कार। I have got 25 years of experience in toxicology. Toxicology, यदि आप define करना चाहेंगे तो English में it is study of poisons. हिंदी में बोला जाए तो विश्व ज्ञान है। 25 साल के experience के बाद जब ब्रह्म कुमारी के डॉक्टर नागरी अलका दीदी मिलने आए थे invitation के लिए, तो आई थॉट इट इज वेरी इजी फॉर मी। आई हैड बीन गिविंग लेक्चर्स, तो स्पिरिचुअलिटी पे एक आधे घंटे का लेक्चर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, एंड आई इमीडिएटली एक्सेप्टेड इट। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट फ्यू स्लाइड, एंड बिलीव मी ये 7 या 8 स्लाइड मुझे 2 महीने लगे बनाने के लिए। देन आई रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज। सो दिस स्लाइड्स आर बेसिकली माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, and I dedicate it to the great job that Brahma Kumari Ishwari Vidyalaya is doing for. So As a scientist, I started digging into research papers. That is my basic nature. I cannot go without proofs. So I started digging into research papers on spirituality. The best thing that I got out of it was J.W. Howden's paper, Development and Psychometric Characteristics of Spirituality Assessment Scale, in the year 1992. What he proposes and purpose of meaning in life, the critical attributes in spirituality which gives us our sense of worth and reason for living. And these attributes can help us defining spirituality. So the focus of spirituality is the centrality of all these four factors. First is self, second is God, third is others, and the fourth is interrelationship between all these three. I used to think it is a common man's understanding, religion and spirituality both are similar. So I tried to understand from these research people what they are. If you see, religion and spirituality are not similar, as far as I understood with my research within last few months. Let us try to slightly define religion. So religion is a social institution in which group of people participate rather than an individual search for meaning. It's a system of practices and beliefs within which a social group engages, can provide a platform for expression of spirituality. Beliefs can inhibit an individual's own spirituality, religious beliefs I mean here, thereby having negative effects on the health of an individual's belief and expectations. But if we try to define spirituality, it's a major, there are some disadvantages in it also. Some may disagree with me, but this is my personal opinion. Major hindrances in defining spirituality is its relationship with religion. Most persons understand that spirituality is about being religious, but this is not true exactly. Some assessment was done in America wherein Americans were asked to define spiritual well-being. They had no answers actually. But majority of answers were given in terms of religious faith. Even researchers who claim to have broader view in, I mean spiritual researchers who claim to have broader view, they also mostly put their questions about prayer and religion. Probably it will be difficult to separate religion and spirituality for these particular reasons. So what exactly is spiritual well-being? Spiritual well-being is neither synonymous nor coterminous with religiosity. In exploring the meaning of spirituality, a restrictive view of relating it with religion must be avoided. That should be the first priority when we try to define spirituality. So coming to the point wherein I have been asked to speak is whether spirituality can be included in medical research, clinical setup. So can we really conceptualize spirituality in medical research? There is a need to account spirituality in medical research in assuming this particular, is assuming a greater importance these days. For compassionate service delivery, medical fraternity has to have some spiritual approach in their treatment and in their efforts to treat their patients. So how does spirituality actually impact health? So research shows connection between beliefs and sense of well-being. Positive belief contributes to physical well-being. This in fact improves spiritual health, it may not cure illness. Improving spiritual health may not cure your illness, but it will help you feel better, to tide over the situation, to tide over the pain. So what are the benefits of spirituality? Whether you consider yourself either a religious person or a spiritual person, there are health benefits associated to spirituality. You get longevity, there is improved emotional status, stronger immune system, reduced risk of diseases, improved self-confidence and fitness, and you have strong support system. So what is the aim of spiritual care? I am talking in terms of medical care, a clinical setup, wherein doctors and medical fraternity can help the patients in a better way. So this helps patients to face their fear of death. In terms of, terminally ill patients, cancer patients who are at the fourth stage, palliative patients, then you have people who are afraid of surgery. So in actually there is a concept of a chaplain in hospital in Europe and US. These chaplains actually counsel the patients spiritually. So that type of a concept I think I understood today morning from one of the speakers when I was talking to him. He has said Brahma Kumari is also doing this type of a job. Hats off to you. It's a really good thing to do. So what is the aim of spiritual care? It helps patients to face their fear, mitigate the uncertainty, discomfort of treatment process, and it also helps in regaining inner peace. These are two longer. There were three different types of studies that were conducted to assess, you know, how spirituality helps in medical patients tide over the problems in a better way. There is a researcher who is Alexis Demens, and she's a graduate student at Harvard Divinity School. And this particular paper was published just last year, May 14, 2021. And the title was very simple, Spirituality and Health. And she has tried to understand what barriers are in place that leave people feeling spiritually unfilled within the context of healthcare and treatment. To answer these questions, it is helpful to understand tangible effects of the spirituality has on decision making by the medical practitioners, also the family members of the patients. So three different studies were conducted. In study one, the patient, doctors and families were given seven different factors. Important factor for the treatment of decision making. One of the important factors for treatment of decision making was faith in God. So the answers that they got were surprising. Patient and their family kept this particular, factor at point number two, priority number two, whereas physicians kept it as priority number seven. The second study that was done, evidence to suggest better treatment decisions can be taken. Spirituality is a factor in decision making. When spiritual support from medical team was given, there were less interventions and there were few ICU deaths. This happened when the medical fraternity was good in spiritual counseling to the patient. There was a study number three, wherein spiritual belief can be phenomenal and psychological. What people believe have visceral ties to their mental capacity in healing. So if they are spiritually, more committed and connected, that helps in better the healing process. So given the importance of spirituality in decision making and health outcomes, where do we go from here? Medical anthropologist Arthur Kleinman developed an explanatory model as a practical tool that can help in implementing a spiritual counseling type of a thing in a clinical setup. It's a simple question, 5 to 7 questions, wherein the explanatory model is a set of questions. These questions were given to the patients and they were asked to answer them, and from that answers actually the physician can understand the spiritual status of the patient and give him counseling through a spiritual guru or the medical doctors themselves. So coming to the final thing, understanding spirituality is very important aspect for healthcare and research and in clinical practices. The type of work that Brahma Kumaris is doing, it's really a great thing. And I hope people like us can help in improving this type of collective efforts. And I wish you all great success for this particular thing. Thanks a lot.
बहुत सुंदर विचार आपने दिए. स्पार्क के साथ मिलकर और भी कई संशोधन कार्यों में आपका साथ और सहयोग आपने ऑफर किया. बहुत बहुत धन्यवाद. अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सम्माननीय मेहमान डॉक्टर स्मिता लेले जी को, जो फॉर्मर डीन थे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी बॉम्बे. वे अपने विचार हमारे सामने रखेंगे.
ओम शांति. हिंदी में मैं बोलने की कोशिश करूंगी, बट मे बी आई स्विच टू इंग्लिश. मराठी और हिंदी में बात करने की आदत नहीं है, मराठी और अंग्रेजी में. सर्वप्रथम मैं सबको नमन करती हूँ कि जिन लोगों के मिलना भी मेरे लिए मुश्किल था, ऐसे दादियों के साथ मैं आज बैठी हूँ. मुझे बहुत भाग्यवान फील हो रहा है. एंड विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर सम ऑफ माई थॉट्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, ऑन स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च एंड मे बी अबाउट अवर लाइफ. ऑफकोर्स ऑल ऑफ अस नो दैट दिस बॉडी इज मी एंड आई एम नॉट मी, दिस बॉडी इज माइंड बट आई एम नॉट बॉडी, एटसेट्रा एटसेट्रा. इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, बट मैडम मेनी ऑफ अस फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, बिकॉज जब कुछ हो जाता है तो हम ये सब ज्ञान सामान्य लोग भूल जाते हैं. एंड सो हमारा जीवन तो शुरुआत बॉडी से होता है, एंड कीपिंग अवर बॉडी फिट ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ में, जहां मॉडर्न साइंस ने हमें बहुत ज्यादा सुविधाएं दी है. और जो इतना बड़ा ज्ञान दुनिया में है और पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में है, उसका आज एक्सेस भी ये मॉडर्न साइंस ने दिया है. जैसे कि कुछ भी मुझे ढूंढना है अबाउट वेदा, 50 इयर्स बैक पता नहीं मैं कभी नहीं ढूंढ पाती, बट अभी गूगल चाचा है जो क्विकली मुझे बता देंगे. कुछ चीजें गलत भी हो सकती है, बट कम से कम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. सो एज अ मॉडर्न साइंटिस्ट आई रिस्पेक्ट द मॉडर्न साइंस, सो नोबडी शुड इंटरप्रेट दैट आई एम सेइंग इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इन दिस टॉक आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज नॉट कॉमन. सो द वर्ड विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान, और यहाँ हम ज्ञान के पीठ में विश्वविद्यालय में बैठे हैं, और जिन लोगों ने जो बीके परिवार के हैं वो कहते हैं वो ज्ञान में है, तो शायद वैज्ञानिक लोगों ने भी उनके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनको तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता है. तो फिजिक्स इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, वेर एज मेटा फिजिक्स इज सब्जेक्टिव. तो ये जो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव है, तो मॉडर्न साइंस कहता है प्रूफ दे दो. बट ऑफकोर्स वॉट इज रिसर्च, सर्च इट अगेन. सो हमारे ये देश में हजारों साल से ये पता था, लेकिन अभी हम भूल गए हैं. सो द यंगस्टर शुड ट्राई टू कनेक्ट द ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड एंड द मॉडर्न, एंड रिसर्च इट एंड री एस्टैब्लिश. सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम सब साइंटिस्ट भी यहाँ साथ में जुड़ के ये जो स्वर्णिम भारत की कल्पना है, जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कुछ हमारा योगदान कर रहे हैं. सो वन एग्जाम्पल आई कैन गिव इन नैनो टेक्नोलॉजी स्केल डाउन. तो एक सिल्वर लेके छोटे छोटे टुकड़े करो, गोल्ड लेके छोटे छोटे टुकड़े करो और नैनो गोल्ड बनाओ, और दूसरा कुर्बी सिल्वर का सॉल्ट लेके प्रेसिपिटेट करो, दैट इज स्केल अप. एंड कोइंसिडेंटली अभी साइंटिस्ट ने ढूंढा है कि नैनो गोल्ड लाल रंग का हो सकता है, और यहाँ हम क्या देखते हैं, शिव बाबा का रंग गोल्डन एंड रेड. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर कमिंग क्लोजर. सो मॉडर्न साइंस टॉक्स एट द टॉप. बड़ा बिल्डिंग है और जहां मैं खड़ी हूँ 1 2 3 एस्कावेट करके मैं काउंट डाउन कर रही हूँ, बट एक्चुअली ओल्ड साइंस में कहते हैं कि अगर बिल्डिंग है तो उसको बुनियाद होगी, और वो बुनियाद शायद बहुत स्ट्रांग, इटर्नल, नॉट अफेक्टेड बाय टाइम स्पेस एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड देन एक लाइफ में तो मैं पूरा एक्सकवेशन नहीं कर सकती, तो क्यों ना मैं पिंडी तो ब्रह्मांडी, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट इन सोलर सिस्टम आई गो इन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दैट्स वेयर. एंड देन इन बायोटेक्नोलॉजी यू सी दैट व्हाट एवर इज देयर इन ई कोलाय आई कैन डू दैट एंड पुट इट इन ह्यूमन बॉडी. सो दिस इज नथिंग बट पिंडी ते ब्रह्मांडी. देन व्हाई वी वांटेड टू इम्पोर्ट एंड गेट एंडोर्स्ड इन अदर कंट्रीज एंड देन फॉलो, लेट्स ट्रस्ट अवर ओन हेरिटेज टू स्टार्ट विथ. So I studied all this when I was doing PhD, because I found PhD is doctor of philosophy. तो कोई भी subject हो, मैं तो philosophy की doctor होती है, तो शायद philosophy is nothing but life का science है, and I must add it. So very recently when I was thinking, I found that solid, liquid, gas and plasma are four states. So solid ke andar, jameen ke andar pura vishwa hai. Kai sare keeda, makode, bacteria hai. Liquid, yani ke water ke andar, bahut jyada hai, including plants, fish and so many varieties are there. Air ke andar, hum sab hai. To shayad aap science ko koshish karni hogi ki plasma ke andar kya hai. And by logic, it will reach to nothing but devata. Jo yahan hame sikhaya ja raha hai, that prepare yourself to be in that format of the world, which is nothing but harmony and happiness. So I am looking forward ki in my own life, agar ye plasma wala find out kar sake, research karke ye naye bacche, so I think I'll be very lucky. Now, when you say science, it starts from physics, chemistry and biology. But biology mein time lagta hai. Pauda badhne mein, body badhne mein. Physics thoda fast hota hai. Chemistry usse fast hota hai. But can something be faster? So cosmic things, nuclear things, electric things, magnetic things can be faster. And I think spirituality is talking of this level, whereas rest of the science is talking of only physics, chemistry and biology. So that's where that balance needs to be brought. One simple story I am telling for the small kids who are here, which I read as a child, ke ek bada bhakt tha, lekin baad aa gaya aur doobne laga. Hodi aayi, phir ek kuch lakdi aayi, kuch volunteers aaye, teen baar usko madad ki koshish ki, madad nahi ki, mera bhagwan mujhe bachayega, mera bhagwan. To doob ke mar gaya. Jab bhagwan ko mila to bola ki kyo mujhe nahi bachaya, wo bola are tumhare paas body hai, mere paas body nahi to maine body bhej di na bachane ke liye. To yahan aake maine dekha ki hamare wo brahma baba yahi kaam kar rahe ki hum sab bachcho ko right line pe la rahe hai. For scientists, I want to tell, partial truth is misleading. So generally most of us believe in equality, socialism, communism, which is true, but I am a chemical engineer. So I believe in difference, because if there is no driving force, there is no flow, there is no electricity, no water flow, nothing like that. So, no, always first in, first out, sahi nahi hai. Jab hum sardi mein jate hai, bahut sari sardi mein, minus mein, teen chaar layers dalte hai thermal se leke. Last mein overcoat dalte hai. Log hume overcoat se pehchante hai. Yahi pancha mahabhut and pancha kosh ka concept shayad hoga. To pehle hum kya nikalte hai? Overcoat. We cannot say ki aise kaise, ye to last mein dala, ye kaise first mein nikalta hai. To aise nahi, there are some processes where first in, first out, like a pipeline. But there are many processes in the nature where first in is last out. So if our scientists keep an open mind, modern scientists, and they bow in front of totality, which I help me, ki maine mera kaam kar diya hai, experiment fail ho raha hai, mujhe depression aa raha hai, PhD nahi aa raha hai. But mujhe koshish karni chahiye, kyunki mujhe pata hai that uncertainty principle is what some people call it God, some people call it luck, some people call it whatever name you will give. But human beings are very small in front of the nature. Abhi tsunami aaya, corona aaya, sabko humko andar bita hai, sab janwar idhar ghum rahe the, kal main abu upar gayi to mujhe bol rahe the. So I will just say that youngsters, please keep your mind positive, because light has presence, darkness is a condition. Knowledge ka book dikha sakti hu, kisi bhi subject ka, ignorance ka book nahi hai. Wealth dikha sakti hu, poverty is condition. So all those negatives, sorry for the toxicologists and Scorpio experts, but I work in food, so we are talking on the positive thing, ki achcha khana khao, achche vichar karo, taki aapko bimari na hai, na body ki, na mind ki, na intellect ki, spirit to bimar pad hi nahi sakta. Thank you very much.
बहुत ही खुशी और उमंग के साथ डॉक्टर स्मिता जी ने अपने विचार हम सबके सामने रखे. प्रैक्टिकली भी रिसर्च वर्क के साथ साथ समाज में महिलाओं में विज्ञान का अभिगम विकसित करने की सेवा का कार्य भी आप करते हैं, और हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स के जीवन में भी आपने बहुत सहयोग दे करके आगे लाया. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्मिता बहन जी. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ राजयोगी हमारे वरिष्ठ भ्राता मृत्युंजय भाई जी को, जो इस विद्यालय ब्रह्मा कुमारी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और हमारी एजुकेशन विंग के आप चेयरपर्सन हैं। काफी यूनिवर्सिटीज में वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के प्रयोग आपने किए हैं और वो कोर्सेस उसमें चलाए हैं, जिससे हजारों युवाओं के जीवन में जागृति लाने के आप निमित्त बने हैं। तो अपनी शुभ कामनाएं हमें देंगे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम इस कॉन्फ्रेंस में व मीटिंग में या संगठन में हम सबको ब्लेसिंग देने अर्थ परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता श्री बाबा को, साइंटिस्टों का भी पिता है, धर्म पिताओं का भी पिता है, शिक्षकों का भी पिता है, गुरुओं का भी गुरु है, उस परमात्मा को हम याद करते हैं, आवाहन करते हैं। साथ साथ में इस समय में, इस परिवर्तन की वेला में परमात्मा की आदि रथ पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इस समय में सूक्ष्म स्वरूप में उपस्थित है, परिस्ता के रूप में, उनको भी मैं आह्वान करता हूं। और साथ साथ में सर कॉन्फ साइंस एंड रिसर्च इन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में साइंस की जोड़ने की जो प्रयास है, एक विधि है, इसका संबंधित सभी भाई बहनों, विशेष करके अंबिका बहन, सरोजा बहन और मगरे भाई डॉक्टर कांतिलाल, श्रीकांत, संजय व स्पार्क विंग की सभी सदस्यों को, और विशेष करके हमारे आदरणीय मित्र भाई जी सुशील भाई जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं। और अभी तक जितने भी भाई और साइंटिस्ट इस संदर्भ में बात किया, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पद्मश्री डॉक्टर एच एस भवास्कर जी और हमारा आदरणीय दादी निर्मला दीदी जी, और अभी कुछ समय के बाद में हमारा अन्य दीदी भी बोलने वाले, वीजीएस शर्मा जी, और अभी जो डॉक्टर श्रीमती लीले, आप सबको मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूं। विज्ञान और आध्यात्मिक, ज्ञान और विज्ञान, ये दोनों जो मिलते थे तब तो क्या होगा, भारत दैवी स्वराज होगा। आप सबको एक इतिहास की एक घटना आप जानते हैं, उस घटना में विशेष करके जो अशोक चक्रवर्ती ने, बाद में अशोक चक्रवर्ती बना, उनका युद्ध हुआ कलिंगा में। कलिंगा में युद्ध होने के बाद में उस कलिंगा युद्ध को स्टॉप करने के लिए व उसको निशस्त्रीकरण करने के लिए कोई साइंटिस्ट नहीं गए, कोई शस्त्रवादी नहीं गए, एक आध्यात्मिकवादी हुए, एक संत गया, एक सन्यासी जाकर के अल्टीमेटली उसको समाप्त किया, स्टॉप किया। भले वो बड़ा विज्ञानी नहीं था, साइंटिस्ट नहीं था, तर्कशास्त्र नहीं था, आध्यात्मिकवादी थे, वह एक संत सा सन्यासी था। एक सन्यासी इतने बड़े घटना, इतनी बड़े हिंसा, इतने बड़े रक्तपात हो रहा था, उस रक्तपात को रोकने के कार्य में एक विज्ञानी को व एक अज्ञान को समाप्त करने के लिए कार्य में किया। मेरा कहने का भाव ये है, और आध्यात्मिक और विज्ञान ये दोनों मिलता है तो तब तो समाज में विवेक जागृत होते हैं। जहाँ विवेक है वहाँ ऑटोमेटिकली बुद्धि पवित्र बनता है, संस्कार श्रेष्ठ बनता है, जीवन समरस बनता है, एक दो के अंदर रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, उसका परिणाम स्वरूप व्यक्ति एक विकसित व्यक्ति और सर्वांगीण विकास होता है, और उनको हम देवता कहते हैं, परिष्ठा कह सकते हैं, और उनको एक महान व्यक्ति कह सकते हैं। ऐसे भारत के हर एक व्यक्ति के जीवन में इसका स्थापन करने के लिए विज्ञान और आध्यात्मिकता का जोड़ने की आवश्यकता है। आज इधर कौन कौन बैठे जिसका क्रोध नहीं आते हाथ खड़ा करे। हमारे आदरणीय नलिनी बेन से रिक्वेस्ट करेंगे इसको एक अवार्ड दे, इसको सम्मान करे, उसका क्रोध नहीं आता है तो। एक बहन ने हाथ खड़ा किया, आप थोड़ा हाथ खड़ा करके सबको दर्शन दीजिए बहन जी। जिन जिन को क्रोध आता है वो हाथ खड़ा करे, अच्छी बात। आप सबको क्रोध, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जिस समय में क्रोध आता है किसका चेहरा खराब होता है? खुद का चेहरा पहले खराब होता है, खुद का आंखें खराब होता है, खुद की जीवन में हार्ट फेल्यूर होने के चांसेस है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांसेस है। परंतु उस समय में विज्ञान को अप्लाई करेंगे और साइलेंस को अप्लाई करेंगे, उस समय में दवाई देने के लिए जाएंगे वह साइलेंस को ऑब्जर्व करेंगे। वास्तव में आध्यात्मिक, इसके सिंपल भाषा में कहूं उसको, आध्यात्मिकता के माध्यम द्वारा क्रोध से जीत सकते हैं, क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। और जो जब भाई होता है, भाई का परिणाम क्या है, भाई का कारण क्या, भाई का कारण ईगो, भाई का कारण अंधश्रद्धा, भाई का कारण बॉडी कॉन्शियस, भाई का कारण शक्तिहीन दुर्बल आत्मा, कमजोर आत्मा, पाप आत्मा, नीच आत्मा, दुरात्मा, अनेक भाषा में शब्दों में यूज कर सकते। इसके लिए आज के दिन में हर व्यक्ति कोई न कोई भय से जी रहा है। इसके लिए खुद के भी कारण हो सकता है, समाज का कारण हो सकता है, विश्व भी हो सकता है, अनेक पावर कॉन्शियस हो सकता है। अभी इन सभी कॉन्शियस को परिवर्तन करने के लिए स्पिरिचुअलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, मॉरलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, डिविनाइजेशन इज रिक्वायर्ड एंड डिविनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। इस डिविनिटी को जीवन में लाना अति आवश्यक है। जहाँ डिविनिटी है वहाँ प्यूरिटी है, जहाँ प्यूरिटी है वहाँ पीस है, जहाँ पीस है वहाँ प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ प्रॉस्पेरिटी है वो एक दो के प्रति रेस्पेक्ट है। अब ये सभी समाप्त होते जा रहे हैं और इस समय में जो यूक्रेन और रशिया में युद्ध जो हो रहा है, इसको समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए। हर घड़ी न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र के बारे में बात करते हैं, परंतु इसका रिक्वायर्ड है न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस की आवश्यकता है, न्यू एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, उसमें सद्भावना की आवश्यकता है, दया भाव की आवश्यकता है, प्रेम भाव की आवश्यकता है, अर्थात स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। वो स्पिरिचुअलिटी के ऑब्जेंस होने के कारण उसका बॉडी कॉन्शियस, अस्त्र शस्त्र का कॉन्शियस, न्यूक्लियर पावर का कॉन्शियस, ये कॉन्शियस मनुष्य को बुद्धि भ्रष्ट बना रहा है। और केवल व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट होता है तो समाज का भी नाश होता है, विश्व का भी नाश होता है। अभी विश्व युद्ध के प्रति बात करते हैं, इसके लिए हम सभी उनके लिए शुभ संकल्प भेजे, शुभ भावना रखे और उनको अस्त्र शस्त्र भेजने के कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, उनका सहयोग, धन की सहयोग, अस्त्र शस्त्र का सहयोग। इस समय में उनको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, इस समय उनको सद्बुद्धि की आवश्यकता है, दुर्बुद्धि को समाप्त की आवश्यकता है, जीवन क्या है उसकी वैल्यू को आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता को जानते हुए और उस आवश्यकता के लिए हम सभी योग करें। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, हम सभी दो मिनट उन सभी आत्माओं के प्रति और सारे विश्व के प्रति भयग्रस्त, आतंक से पीड़ित सभी आत्माओं को शांति के लिए हम दो मिनट के लिए साइलेंस में बैठे और परमात्मा को भी याद करें, उन सब आत्मा को सद्बुद्धि देवे, विवेक जागृत हो दे, विश्वास उनमें अंदर आवे और विनाश से मुक्त होवे। ऐसे के लिए ओम शांति मंत्र अर्थात अपने मन के अंदर ही आप आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा को याद करते हुए शुभ भावना रखते हुए साइलेंस में रहे। ओके, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मृत्युंजय जी। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भ्राता कृष्णा अय्यर जी ने भी एक बार कहा था कि गाइडेड मिसाइल्स इन मिसगाइडेड हैंड्स, ऐसी ही परिस्थिति है। बहुत सारे सुंदर संशोधन अगर ऐसे व्यक्तियों के हाथ में पहुंच जाती है तो उसका दुरुपयोग होता है। आवश्यकता है कि हर व्यक्ति और विशेष करके विभिन्न क्षेत्रों में जवाबदार बनकर के जो कार्य करते हैं उनके मन बुद्धि भी इतने शुद्ध और श्रेष्ठ हों, जो मेहनत से की गई रिसर्च का सदुपयोग करें और मानव समाज के कल्याण में उसका उपयोग हो। वहां आध्यात्मिकता और योग हमें मदद करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूं परम आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर नलिनी दीदी जी को, जो पिछले 66 वर्षों से 66 ईयर्स से विद्यालय से जुड़े हैं और बॉम्बे घटकों पर सब जोन के आप जोनल हेड हैं। आपके मार्गदर्शन में बॉम्बे और महाराष्ट्र में अनेक सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं। शुरू से ही आपकी प्रतिभा बहुमुखी रही। यहाँ जो बहनें अपना जीवन समर्पित करती हैं और ब्रह्मा कुमारी टीचर बनती हैं, उस टीचर ट्रेनिंग के लगभग 7 जितनी किताबें आपने तैयार की हैं, जिससे सभी समर्पित बहनों को बहुत ही मार्गदर्शन मिलता है। व्यक्तिगत जीवन की धारणाएं क्या हो और सेवा किस प्रकार से करनी है, बहुत ही गहराई से उसमें आपने मार्गदर्शन दिया है। ब्रह्मा बाबा के बहुत नजदीक आप रहे, उनकी प्यार के पात्र बने और उसका रिटर्न भी आप अपनी सेवाओं के माध्यम से दे रहे हैं। तो ऐसे वरिष्ठ राजयोगिनी आदरणीय नलिनी दीदी जी को हम सुनेंगे। दीदी जी,
ओम शांति। बहुत हर्ष की बात है कि हमारी स्पार्क विंग के साथ हमारे कई वैज्ञानिक जुड़े हैं और अब आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों मिलकर हमारी भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाले भारत देश को, जबकि हमारा भारत देश वर्तमान में अपना अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, मुझे इस बात की स्मृति दिलानी है कि हम तो आज ये लक्ष्य लेकर के अमृत महोत्सव को मनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे फाउंडर शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाकर सन 1936-37 में ही इस विश्वविद्यालय के द्वारा इस विश्व का भविष्य हमारे आगे रख दिया था, एक कल्प वृक्ष के रूप में, जिस कल्प वृक्ष के अंदर ये दर्शाया भी गया कि कैसे अंत में रशिया, अमेरिका, ये दो बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में जब लड़ेंगी तो किस प्रकार इस सृष्टि का महाविनाश होगा और फिर नई दुनिया की स्थापना होगी। वर्तमान हम यही नजारा प्रैक्टिकल में देख रहे हैं और हर एक हमारे उन लोगों के लिए जो निर्दोष आत्माएं बेवजह जा रही हैं उनके प्रति करुणा और सहानुभूति हम प्रदर्शित कर रहे हैं। परंतु मुझे आज विशेष ये बात बतानी है कि हमारे इस स्पार्क विंग के अंदर जो भी हमारे वैज्ञानिक भाई बहने पधारे हैं या जो भी अन्य विशेष आत्माएं पधारी हैं, आप लोगों को क्या ये प्रेरणा समझ में आती है कि आपको यहाँ पर किसने लाया? आप तो निमित्त मात्र कह देंगे कि हम फलाने केंद्र से फलानी निमित्त बहन फलाना निमित्त भाई उनके साथ उनसे प्रेरणा लेकर के और उनके निमंत्रण पर हम यहाँ पर पहुंचे। परंतु मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आप लोगों को स्वयं परमपिता परमात्मा ने उनको निमित्त बनाकर और अपने घर में बुलाया है। आप मेहमान नहीं, भले आप एक दो दिन हमारे मेहमान बन के रहे लेकिन आप मेहमान नहीं हो, आप हमारे घर के बाबा के बच्चे हो और इसीलिए बाबा ने आपको ढूंढ ढूंढ करके और इस ईश्वरीय परिवार के इस भगीरथ कार्य में जो कि सन 1936-37 से ही हमारे फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने कार्य शुरू किया कि इस अधर्मी दुनिया का विनाश हो और सत्धर्मी दुनिया की स्थापना हो। तो इस स्थापना में वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा पार्ट है और उस पार्ट को निभाने की जिम्मेवारी जो है हमारे वैज्ञानिक भाई बहनों की रहेगी। हम हमारी जिम्मेवारी निभा रहे हैं जो हमें आध्यात्मिकता से निभानी है वो हम कार्य कर रहे हैं। परंतु जब इतना विशाल कार्य के पूरे विश्व का परिवर्तन हो और हमारा यह विश्व जब भारत कहलाएगा, पूरा विश्व एक भारत होगा और उस भारत के अंदर क्या होगा, हर एक का ये सपना है, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, निर्धन हो धनवान हो, वैज्ञानिक हो चाहे अज्ञानी हो, जो भी हो, आज हर एक का सपना क्या होता है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, हर एक एक दो को परिवार का एक सदस्य समझकर भाई भाई की या भाई बहन की दृष्टि वृत्ति रखते हुए और ऐसे जिए जैसे जीवन जीने की कला के लिए जो राजयोग सिखाया जाता है, जिस राजयोग से जो हम जीवन जीने की कला सीखते हैं ना, तो हमें किसी भी दुखों में दुखी हम नहीं होते, किसी भी अशांति के साथ हम अपने मन को नहीं चलाते, हम कर्मेंद्रियों के भी राजा बनते तो हम आने वाली हमारी जो नई दुनिया जो प्रभु रचने जा रहे हैं और रच रहे हैं, जहां कोई दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी, हरेक वहां पर बड़े प्रेम और प्यार से रहेंगे। मिसाल के लिए कहा जाता है, जहां शेर और बकरी भी एक नदी के किनारे जल पिएंगे, जहां घी दूध की नदियां बहेंगी, और हमारा भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, हम फिर से ऐसा भारत को बनाने के लिए सक्षम हैं। परंतु हमारे वैज्ञानिक जो हैं, जो प्रभु से प्रेरित, प्रभु की प्रेरणा से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मैं उनके लिए ये अवश्य कहूँगी कि अभी आप हमसे जब जुड़े हैं, तो हमसे मिल करके इस आध्यात्मिकता को अच्छी तरह समझकर, महसूस कर और उसमें भी आप रिसर्च कर, अपनी विज्ञान की जो रिसर्च है उनको जोड़कर, और आप ये कार्य को और तीव्र गति से बढ़ाने में हमारे साथी बने, सहयोगी बने और बाबा के बच्चे बन करके, और आप इस कार्य को इतना सक्सेस करें कि जिस भारत देश के लिए आज सभी ये बात याद करते हैं कि हम हमारे भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं, हमारे भारत को स्वर्णिम भारत बनाएं, तो ये स्वर्णिम भारत का स्वप्न हम, आप और अन्य कई ऐसी विशेष आत्माएं मिल करके और उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको हम यही कहेंगे कि अभी इस बार तो आप मेहमान बन के आए, लेकिन अब आप जब दोबारा आएंगे और जल्दी आएंगे, तो जब जल्दी वापस आएंगे तो आप अपने साथ उन लोगों को लाएंगे जो इस कार्य में हमारे भी साथी सहयोगी बन करके, और हम सब मिलकर के इस कार्य को जल्द से जल्द सफल करेंगे और हम सभी के स्वप्न को पूरा करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, आपने हम सबको बहुत अच्छी प्रेरणा दी। हम सबको मिलकर अध्यात्म और विज्ञान को साथ लेकर परमात्मा के नव विश्व की स्थापना के कार्य में मददगार बनना है और ऐसी सुखमय बेहतर संसार हमें बनाना है। बहुत ही सुंदर विभिन्न वक्ताओं से चिंतन का लाभ हम सबको मिला। कॉन्फ्रेंस का ये स्वागत सत्र अब समाप्त हो रहा है। आगे और सत्रों में भी हमें पधारे हुए सभी बौद्धिक और आध्यात्मिक वक्ताओं का लाभ मिलेगा। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कांतिलाल भाई को कि वो आभार विधि। आभार विधि के पूर्व मेहमानों को सम्मानित किया जाएगा। मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों को कि गिफ्ट लाएं और मेहमानों को सम्मानित करें।
ओम शांति।
डॉक्टर कांतिलाल भाई का परिचय देती हूँ। पिछले 37 सालों से आप इस विद्यालय से जुड़े हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बिरला कॉलेज कल्याण में कार्यरत भी हैं। काफी रिसर्च वर्क आप करते हैं, क्योंकि आपने भी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से एंटी ओबेसिटी विषय पर पीएचडी किया है और बुक्स भी काफी लिखे हैं।
तो वे विद्यालय के तरफ से स्पार्क विंग के तरफ से आभार विधि संपन्न करेंगे।
थैंक यू दीदी। ओम शांति। एक छोटा सा आभार प्रदर्शन। सबसे पहले तो आप गीता दीदी जिन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन किया, हमारे अंबरनाथ के तनुजा दीदी और शशि दीदी जिन्होंने बैच और फूलों से सभी मेहमानों का सत्कार किया, आपका आपका थैंक्स तनुजा दीदी। हर प्रोग्राम में सतीश भाई अपने मधुरवाणी ग्रुप के साथ उपस्थित रहते हैं और कार्यक्रम के शुभार्थ बढ़ाते हैं, इसलिए सतीश भाई उनके मधुरवाणी ग्रुप का भी हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम डांस के लिए विभावरी सिस्टर विभावरी और उनका ग्रुप आया था, ये पूरा ग्रुप हमारे कॉलेज के और कल्याण के एक स्टूडेंट है, उन सभी का भी मैं थैंक्स देता हूँ। एक छोटी सी बच्ची पलक जिन्होंने आकर के पलक झपकते ही चंद शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था, पलक बहन का भी इसलिए थैंक्स है। सरोज दीदी ने हम सभी का परिचय कराया, सरोज दीदी ने अपने मधुर शब्दों से सभी को सभा को अवगत कराया, इसे सरोज दीदी का भी मैं थैंक्स देता हूं। स्पार्क के सीनियर मेंबर सुशील चंद्र भाई जी जो कि साइंटिस्ट है डीआरडीओ में, आपने भी स्पार्क की गतिविधियों के बारे में सभा को अवगत कराया, आपने SEL मतलब सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में हाईलाइट किया, थैंक्स सर, आपका इसके लिए आभार। हमारी अंबिका दीदी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने अबाउट द कॉन्फ्रेंस की थीम के बारे में हमें अवगत कराया है, इसीलिए ये सत्र दो दिन चलते रहेंगे, उसमें हमें पैकअप क्या मिलेगा, नॉलेज क्या मिलेगा, क्या टेक बैक क्या है, उसके लिए अवगत कराया, अंबिका दीदी का थैंक्स। हमारे पद्मश्री बावस्कर सर, आपने एक नॉलेजफुल भाषण किया है, आपने जो डेफिनेशन बताई साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की, उसमें आपने जो वैल्यू एडिशन किया, WHO ने जो ऐड किया है स्पिरिचुअल हेल्थ, उसकी डेफिनेशन बताई और सबको नए रिसर्च के बारे में अवगत कराया है। आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी आप फिजिकल मेजरमेंट से गिन नहीं सकते, बल्कि व्यक्ति के वाइब्रेशन से उसको जान सकते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू, विल कंटिन्यू द सेम रिसर्च। हमारे नलिन दीदी ने हमें आशीर्वचन दिए, इंस्पायरेशन भी दिया और हम सभी को 7 डेज कोर्स करने के लिए आमंत्रित भी किया है। दीदी जी आपने कहा हम सब यहाँ पर बाबा की प्रेरणा से आए हैं और बाबा हमें प्रेरणा देता है, दीदी हम सभा की तरफ से आपको आश्वासन करते हैं कि आगे आने वाले हर स्पार्क में हम और एक के दो, दो के चार होकर के आते जाएंगे। डॉक्टर शर्मा सर द इको टॉक्सिकोलॉजिस्ट, आपके स्पीच में आपने हाउ टू हेल्प टू पेशेंट टू ओवरकम द डेथ ऑफ द फियर ऑफ द डेथ, इसके लिए अवगत कराया। असल में डॉक्टर कहते हैं कि मैं तो दवाई देता हूं, बचाने वाला ऊपर बैठा है, दवाई से पेशेंट ठीक नहीं होता बल्कि दुआ से पेशेंट ठीक होता है, जो मिसिंग एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन है उसके लिए आपने अवगत कराया, थैंक यू सर। स्मिता लेले मैडम जो फाउंडर डीन है, आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छी लगी, ओल्ड इज गोल्ड, भारत स्वर्णिम था, भारत स्वर्णिम बनने वाला है, हम घूम फिर करके अभी नैनो टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं, करंट रिसर्च अभी नैनो टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं, पिको टेक्नोलॉजी की इमर्जिंग समय यह है और पिको टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली टेक द भारत टू द स्वर्णिम एज, थैंक यू मैडम। मृत्युंजय भाई आपके स्पीच से तो सारी सभा का क्रोध और भय चला गया, आपने सभी का क्रोध आज हरण कर लिया, इसलिए आपका थैंक यू। नलिनी दीदी आपने इंस्पायरेशन में कहा कि इंडिपेंडेंस को 75 इयर्स हुए हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के पहले हमारे ब्रह्मा बाबा ने इस भारत को स्वर्णिम बनाने की कार्य की शुरुआत की है, हम सभी उसमें सहयोगी बनेंगे। इस कार्यक्रम के लिए, इस फंक्शन के लिए, इस सर कॉन्फ्रेंस के लिए जिन्होंने मेहनत की, जो बैकस्टेज आर्टिस्ट भी और हमेशा सबको आगे बढ़ाते, खुद आगे नहीं आते, ऐसे हमारे श्रीकांत भाई, संजय भाई, हमारे पूरे टीम का हम शुक्रिया करते हैं। लास्ट बट लिस्ट, जी शिव बाबा के आशीर्वाद से, शिव बाबा की याद से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिव बाबा का भी थैंक्स, आप सभी का भी थैंक्स, आपके बिना ये कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती थी। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। ओम शांति।
कांतिलाल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्पार्क विंग के तरफ से राजयोगी बी के श्रीकांत भाई, संजय भाई, अभिराम भाई तथा स्टेज प्रोग्राम को संभालने में मदद करने वाली तनुजा बहन और शशि बहन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यालय शांतिवन कैंपस के लाइट, माइक, वीडियो, फोटोग्राफी आदि सभी डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। हम 3 मिनट परमात्मा की याद के साथ उद्घाटन सत्र को संपन्न करेंगे। 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर सभी भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे और शाम के सत्र में प्रोग्राम अनुसार सभी समय से हॉल में पधारेंगे। ओम शांति। शांति डायमंड हॉल के वल्लभ भाई, श्री राम भाई तथा सेवाधारी भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पूरी व्यवस्था प्रदान की।